से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ।
ॐ शांति, ॐ शांति। गुड मॉर्निंग। आज 26 जून है, साकार बाबा की मुरली हम सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे तुमको निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब सहन करना है, क्योंकि अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि ब्राह्मण बच्चों को बाबा एक वार्निंग देते हैं, और वो वार्निंग है, बाप से कभी रूठना नहीं। अगर बाबा से रूठे तो सदगति से रूठ जाएंगे और फिर कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तो कई बच्चे आपस में या ब्राह्मणी से रूठते हैं तो फिर संशय में आ जाते हैं और बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो ये बाबा ने विशेष आज मुरली में ध्यान खिंचवाया है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि जो भगत हैं वो कहते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, वो तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसी सिद्धि दिखाते हैं तो उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं भगवान आते हैं तो फिर इतने कम लोग क्यों। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, यहाँ कोई कनरस नहीं है ना, वहाँ तो पाठ करते हैं, कथा करते हैं, वहाँ कनरस है। फिर बाबा ने कहा, भारत जो स्वर्ग था वो वंडर ऑफ वर्ल्ड था, ऊंचते ऊंच स्वर्ग हैं और नीचते नीच नरक हैं। तो अभी जो दुनिया के वंडर हैं वो माया के वंडर हैं, जो बाबा का वंडर है वो तो स्वर्ग है। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है, तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? कौन सी वार्निंग? उत्तर है, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं, कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के दिन आएंगे। इस पर ही बाबा ने मुरली चलाई है। ओम शांति। मीठे मीठे सकीलधे बच्चों ने गीत सुना, सभी ने सुना हुआ है ना ये गीत? कोई है सभा में जिसने ये गीत नहीं सुना तो हाथ उठा सकते हैं, फिर सुनवा देंगे लास्ट में। हाथ उठाओ लंबा लंबा जिन्होंने नहीं सुना। अच्छा है, तो लास्ट में एक बार इसके गीत बजा देना। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो वह किसी ना, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। इवन संगम युग में भी हम जब बाबा के बने तो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते वह किसी ना किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। भले बाबा के पास आए हैं, सुखदाता है बाबा, लेकिन फिर भी दुखी होते हैं। तो अपने कारण से ही हम दुखी होते हैं ना, अपने ही, जैसे बाबा की श्रीमत अनुसार हम नहीं चलते तो फिर कोई ना कोई कारण से यहाँ भी बाबा के पास आकर भी दुखी होते हैं। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह कहेंगे क्या हर्षा है, भगवान के पास जाते हैं हा? तो ये छोटे मोटे विघ्न उनके लिए मायने नहीं रखेंगे, है ना। वो सोचेंगे क्या है ना? थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो जैसे लगेगा ही नहीं कि हम कुछ सहन कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि यहाँ भी बच्चे आते हैं, सबको बहुत सुविधा थोड़ी मिलती है। रहने का कैसा मिला, खाने को कैसे मिला, तो क्या समझते हैं कहाँ आए हैं? बाबा से प्यार है तो ये सारी बातें मायने रखती हैं। तो वही बाबा ने कहा कि जो भगत हैं, जो ऐसा सोचते हैं, जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्षा है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के, अब वो तो भक्ति में तो बहुत भगवान है। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह कहते हैं हर्षा नहीं, जो हो जाए हर्षा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़े ही जाएंगे, कोई कोई तो लौट भी जाते हैं। अब जो कमजोर होंगे वो लौट जाएंगे। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं, दोनों ही बातें हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये अभी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, वहां नीचे शांति वन में 10,000 माताएं आए हैं, है ना, माताओं की भट्टी, अभी कल ही उद्घाटन हुआ। तो 10,000 को क्या कहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मधुबन में कितनी भीड़ है, बाप को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी। अब सबको एक जैसी सुविधा तो नहीं मिल सकती, तो कई ऐसे होते हैं जिनको तकलीफ भी होती होगी। पट में सोना पड़ता है, आजकल तो फिर भी बहुत प्रबंध है, लेकिन पहले जब मधुबन में इतना आवास निवास नहीं था, हमें भी याद है जब हम शुरू शुरू में यहाँ आते थे बाबा मिलन में, तो हम पट पर ही सोते थे। और जब यहाँ मधुबन में भी आए रहने के लिए तो भी 6 महीना पट पर ही सोते थे, क्योंकि यहाँ पर रहने की इतनी जगह है ही नहीं। तो बाबा ने कहा पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी ही चाहता है बच्चों को पट में सुनाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर भी होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन फील ही नहीं होता था कि पट पर सो रहे हैं ना, खुशी खुशी सोते थे। किससे मिलने आए हैं, बाबा से मिलने आए हैं। तो बाबा ने कहा कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई को ऊंच मर्तबा, कोई को कम, परंतु सुख जरूर होगा। बाबा ने कहा सतयुग में चाहे दर्जा ऊंच है या नीच है, लेकिन सुखी सब होंगे ना, राजा है या प्रजा। ये भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं, कुछ भी सहन नहीं कर सकते, कईयों की नेचर बहुत सेंसिटिव होती है, छोटी छोटी बात में फीलिंग में आ जाते हैं, तो कुछ भी सहन नहीं कर सकते। उनको कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है, अब ले भी आई है और हमारे को सुविधा भी नहीं मिलती है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया। अब सोच लो आप, हाँ कोई कोई होंगे, सब तो नहीं, मेजोरिटी तो बाबा के स्नेह में आते हैं, पूरी पहचान नहीं है। हाँ जो ऐसा सोचते हैं इसका मतलब क्या है, या तो निश्चय नहीं है या पहचान नहीं है कि हम कहाँ आए, किसके पास आए। तो बाबा ने कहा पूरी पहचान नहीं, विश्वविद्यालय में आए हैं, इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में, यहाँ के रंक और राव में और वहां के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं और रंक भी दुखी हैं। यहाँ पे जो धनवान है वो सुखी है क्या? तो बाबा ने कहा दोनों ही दुखी हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है पतित विकारी दुनिया, भल किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ तो जाने वाला नहीं है। इसीलिए कहते ना, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले किसकी आग जलाए, सफली होगी उसकी जो खर्च करे नाम धनी के। तो अभी वो समय है, तो बाबा ने कहा ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, हाँ आज दुनिया में कितने बड़े बड़े साहूकार हैं ना, उनकी भी लिस्ट बनाते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग। तो बाबा ने कहा बिरला है, बाबा के समय में बिरला प्रसिद्ध होंगे, बिरला, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, माना अगर उनको ये पहचान हो जाती कि यहाँ भगवान आया हुआ है तो फिर बाबा ने कहा रुकते नहीं, फट से आ जाते, जाएंगे भी कहाँ, सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ना सके। हाँ तो अभी नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे, लास्ट में आना तो सबको ही है ना। बाबा कहते एक ही हट्टी है, तो बाबा से संदेश लेकर के तो सभी को ही जाना है। अगर अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया, ऐसे बहुत रूठते रहेंगे गिरते रहेंगे, क्योंकि पुराने संस्कार है ना, तो पुराने संस्कारों में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, आपस में ही रूठ जाते हैं, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, हाँ सबको पता है बाबा कौन सी संस्कृत बोलते हैं, और फिर भागंती, कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है ही नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है, जो निश्चय बुद्धि है वो तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने कहा कि वो समझते हैं जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, तो बाबा धन को माया नहीं कहते, बाबा धन को क्या कहते हैं, संपत्ति है जिससे सुख मिलता है, तो जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना, वहां तो आत्माएं शांति में बैठी हैं, परम धाम में तो आत्माएं शांति में बैठी हैं, कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो हम सदैव वहां रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। कोई सोचते ना मोक्ष मिल जाए सदा के लिए, चक्कर के चक्कर में आने से ही हम छूट जाएं, तो फिर बाबा क्या कहते हैं, छूट जाएंगे? कोई छूटेगा चक्कर में आने से? तो नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे कहने से थोड़ी ही होगा, बच्चों को समझाया है ये बना बनाया खेल है, बहुत हैं जो किसी ना किसी संशय में आकर छोड़ देते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पे आना ही बंद कर देते हैं। अब सेंटर पे आएंगे नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर माया अपना बना लेगी, तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी। तो बाबा ने कहा यहां तुम फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं, फूल जरूर बनना है, कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं ये ऐसे हैं, एक दूसरे को देखते हैं ना, अब कमियां तो सब में ही है, ऐसा तो है नहीं कि कमी नहीं है, तो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा दूसरों को देखते हैं कि फलाना ये करते हैं ये ऐसे हैं, इसीलिए हम नहीं आएंगे। अब क्यों रूठे? नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। हाँ, दूसरी फिर भी छुट्टी दे दी बाबा ने, लेकिन एक बाबा से कभी भी नहीं रूठना है। बाबा से रूठे तो क्या होगा, बता दिया बाबा ने कि सजाएं बहुत कड़ी हैं, गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा मिल नहीं सकती। फिर बाबा ऐसे ही सजा नहीं देंगे, बिल्कुल बताएंगे कि आपने क्या गलती की जिसकी ये सजा है। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा, संगम युग का भी साक्षात्कार होगा, तुम पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी, तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है, तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने, ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामानुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है, आप ज्यादा बुलाते तो नंबर से हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर बाबा ने कहा बिना छुट्टी के भी आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, भीड़ होगी, तो भीड़ होगी तो फिर बाबा ने बताया, तो कुछ तकलीफ हो पड़ती है, बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज न मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पर आए कुछ नहीं मिला ठीक से, तो बाबा ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहक जो हमें मारते हैं, अभी देखते ना युद्ध में कहीं भी मिसाइल टपका देते हैं और जो मरने वाले वो कौन है, कोई दोष है उनका? तो बाबा ने कहा ऐसा समय, बाबा तो पहले से ही बता दिया, कभी बाबा साकार बाबा ने बताया कि ऐसा समय आएगा जो क्या हमने गुनाह किया है, नाहक हमें मारते हैं, उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहक पाठ, अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, वो भी बॉम्ब्स ही तो है, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूने नाहक हुआ ना, अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे और तुम बच्चे बहुत खुश होते हो, खुश होते हैं, क्यों खुश होंगे? हाँ, बाबा ने कहा क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है, अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी, तो हमें पता है कि फिर सत्ययुग तभी आएगा जब विनाश होगा। सत्ययुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सत्ययुग आदि में क्या था? यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना? ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सत्ययुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सत्ययुग में थोड़े ही आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं ना, भोली भाली माताएं होती हैं तो बाबा बाबा करके बस बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा वो इतना ज्ञान समझते नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया तो क्या भगवान नहीं कर सकता? क्या कहेंगे, कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है लेकिन करता नहीं है, क्योंकि मम्मा की मुरली में हमने सुना ना, बाबा मम्मा से बात कर रहे थे तो बाबा ने क्या कहा कि चाहे तो एक सेकंड में बाबा कुछ भी कर सकता है लेकिन बाबा करता नहीं है। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोवर्स बन जाएंगे। दुनिया में होता है ना, थोड़ी भी सिद्धि पाली, दो चार चमत्कार दिखा दिए तो बस सारी दुनिया उसके पीछे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं फिर इतने थोड़े क्यों? प्रश्न उठता है, कई बाबा से प्रश्न पूछते थे, अच्छा आप कहते हो भगवान पढ़ाते हैं और बैठे कितने हैं? उस समय तो 50 ही बैठे होते थे, अभी तो फिर भी हजारों हैं, बाबा के बच्चे लाखों हैं। तो बाबा ने कहा पूछते हैं इतने थोड़े क्यों? अरे यहाँ तो मरना होता है, यहाँ तो जीते जी मरना है, वहां तो कनरस है, बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं, यहाँ तो कनरस की बात नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है मन मना भव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, सब तो नहीं कोई कोई होते हैं ऐसे, तो बाबा ने कहा अच्छा रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, ये तो कर सकते हो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा, अब स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना, उसकी तो गारंटी है बाबा ने कहा, लेकिन अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है, राजाई पद पाना है या रॉयल फैमिली में आना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा कि वो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा, प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे? जो बहुत मेहनत करते हैं वही ऊंच पद भी पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं, आज की दुनिया में भी किसी को ऊंच पद पाना है तो कितनी मेहनत करते हैं, किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो ऐसे ही बन जाते हैं, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना है तो मेहनत। बाबा ने कहा पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह नहीं सकता, तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य भल महिमा गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा की महिमा गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यह सेवन वंडर्स माया के हैं। आज की दुनिया के जो सेवन वंडर्स हैं वो किसके हैं? माया के। सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच है स्वर्ग और नीचते नीच है नरक। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच हमें ले जाते हैं, बाबा हमें कितना ऊंच बनाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहां भी बाहर जाओ, बाबा तो कहता है भले विदेश में जाकर रहो लेकिन क्या करो, क्या करो, सिर्फ एक बाबा को याद करो। तो भल कहां भी बाहर जाओ सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं भगवानो वाच, न कि ब्रह्मा भगवानो वाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है उस समय, हो सकता है जो पार्टी आई होगी बहुत संख्या में आ गए तो बाबा को जो लगा वो बाबा ने मुरली में कहा, तो हो सकता है बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते, छोड़ते हैं किसी को, कोई भी पोस्ट वाला हो, एक जरा सी उसके मुंह से एक शब्द निकल जाए क्या करते हैं सब, उसी के पीछे टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो किसी को भी आज मनुष्य छोड़ते नहीं। तो बाबा ने कहा, कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, हमारे देश का ये भविष्य है, न्यू ब्लड है, ऐसा सोचते हैं। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, देश की संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं ना, क्या क्या करते हैं जो आज के जो स्टूडेंट है, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है, ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स को नहीं जानते हैं, तो उन्हें क्या कहें, क्या कहेंगे ऐसे को? बाबा क्या कहता है? हाँ, नास्तिक। तो बाबा ने कहा बड़े ते बड़ा कौन है उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है, धर्म स्थापकों का क्या पाठ है, है ना? ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ अलग है, उनका रचयिता त्रिमूर्ति शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा दुनिया में ये सब कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सबकी सदगति करता है। अब ये सब थोड़ी सदगति करते हैं, बाबा ने कहा ना कल मुरली में भी कि ये आते हैं तो बाबा ही स्थापना पालना विनाश करते हैं, ये तो सब आकर के सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, तो सदगति तो नहीं देते। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वही परम गुरु भी हैं, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बाप टीचर सदगुरु है ना, तो पढ़ाते भी हैं। उनका पाठ ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं। एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। इस यज्ञ में पूरी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है, वो साधारण आहुति नहीं पड़ती। कौन सी आहुति पड़ती है? बाबा ने कहा सारी पुरानी दुनिया। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे, फिर न कोई लड़ाई लगेगी न यज्ञ रचा जाएगा। हाँ, फिर और कोई सत्यु त्रेता में कोई यज्ञ की फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। और तो सभी नीति नीति कहते हैं, तुम थोड़े ही ऐसे कहेंगे। हम कहेंगे नीति नीति, हम तो आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाबा ने हमें पूरा नॉलेजफुल बनाया है। बाप बिगड़ और कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। कल भी बाबा ने कहा ना, खुशी में क्या होना चाहिए? गदगद। खुशी में गदगद होना चाहिए कि कौन हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है, बाबा को ही भूल जाते हैं। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहां कोई का अपमान किया नहीं जाता, ऐसे तो कोई बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ड्रामा अनुसार कुछ होता है तो अगर कोई भी बात है बाबा ने कहा तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी ना। मम्मा के मम्मा थी तो कचहरी होती थी रोज यज्ञ में, रात को कचहरी होती थी, सारा दिन जो भी हुआ तो फिर उसका तुरंत समाधान कर देते थे। तो फिर बाबा ने ये कहा बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी, सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। शिव बाबा सुप्रीम सर्जन है, तो बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन इनको अंजन भी कहते हैं। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये ज्ञान अंजन बाबा ने कहा, ये ज्ञान इंजेक्शन देते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। कहते थे ना सुरमा लगाती है ब्रह्मा कुमारियां और जादू करती हैं, इसीलिए इनकी आंखों की तरफ मत देखना। दो बातों का ध्यान खिंचवाते थे, आंखों की तरफ नहीं देखना और इनका दिया हुआ कुछ भी मत खाना। इन दोनों में क्या है? जादू। तो बाबा ने कहा जादू की कोई बात नहीं है। तो किसका जादू लगता है? शिव बाबा का जादू। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। आज दुनिया में कितने अपराध होते हैं केवल इसके कारण। तो बाबा ने कहा इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। सुनाएंगे ऐसे तो फिर बाबा ने कहा और ही 100 गुना दंड हो जाएगा। बाप कहानी भी सुनाते हैं। कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। एक पंडित की कहानी बताते हैं ना कि उसने कहा राम राम कहो पार हो जाएंगे, तो उसके सुनने वाले तो पार हो जाते थे, और जब उसका टर्न आया उसको बुलाया कि भाई आप हमारे गांव में आओ, आप भी वहां आकर के कथा करो, तो नदी पार ही जाना था। तो वो माताएं तो पार हो गई और वो पंडित जी नाव का इंतजार कर रहे थे। तो माताओं ने कहा पंडित जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, आइए। तो उसने कहा नाव कहाँ है? तो उन्होंने कहा आप तो कहते हैं राम राम करके पार हो जाओ, हम तो पार हो जाते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे तो नाव चाहिए। तो बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं है, ये बेहद है, अनलिमिटेड है। ये जो भी है आकाश है, सागर है, और ब्रह्म में है तत्व परम धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं। तो बाबा ने कहा इनका अंत पा नहीं सकते। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं। विज्ञान तो पूरी कोशिश करती है कि सब नॉलेज हो जाए हमको, ये सब क्या है कैसे है। वहां सतयुग में कोई पुरुषार्थ नहीं करते, इनका अंत पाने का पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? लास्ट में क्या होने वाला है? अभी भी ईरान का अटैक हुआ तो दुनिया को डर लगने लग गया कि तेल मिलना बंद हो जाएगा, तो आधी दुनिया रुक जाएगी अगर तेल मिलना बंद हुआ तो। तो बाबा ने कहा पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है फिर उनसे अति दुख भी है। फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो अभी भी हुआ इतना बड़ा क्रैश हुआ तो कितना दुख ना, जितने जिनके भी लोग मर गए। तो बाबा ने कहा उसका सुख भी है तो फिर दुख भी है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा सार, तो मुख्य बात क्या कही बाबा ने? क्या करना है? रूठना नहीं है। तो पहला है किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं उनसे बचने के लिए, और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है। सजाएं बहुत कड़ी हैं उनसे बचने के लिए, और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा है ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी, बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, सबको क्या चाहिए? तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान, ऐसी आत्माओं को ही श्रेष्ठ भाग्यवान कहेंगे। संग्रह युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। कर्म भोग तो आता है सबके सामने, लेकिन कैसे महसूस होगा? सूली से कांटा, यानी उसका वो कष्ट अनुभव नहीं होता। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, यानी कर्म योग से कर्म भोग को हम चुक्त करते हैं। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। चाहे बीमार है तो भी क्या है? स्वस्थ है या बीमार है? सदा स्वस्थ है। मन बना भाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो। मन की खुशी किससे है? बाबा की याद से। तो जितना मन मना भाव रहेंगे उतना मन खुशी में रहेगा, तो इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। कौन सा धन मिला है? कौन से धन की समृद्धि है? हाँ, भले स्थूल धन इतना नहीं भी है, दुनिया की भेंट में तो साधारण है, हाँ, लेकिन कौन से धन से धनवान है? ज्ञान धन। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है, यानी उनकी ये स्थूल आवश्यकताएं भी स्वतः ही पूरी होती हैं। और सर्व संबंध भी एक के साथ हैं, संपर्क भी होली हंसों से है। परिवार भी कौन सा परिवार है? सब कौन है? पवित्र होली हंस। इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः ही प्राप्त है, यानी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा ने ये सब प्राप्तियां हमें अभी से ही करा दी हैं। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, जैसे बाबा ने कहा अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? असली स्वरूप कौन सा है? आत्मिक स्वरूप। हाँ, तो ये संगम में थोड़ा समय बाबा हमें ये मेहनत देते हैं कि हमें कौन से स्वरूप में रहना है? आत्मिक स्वरूप में। यह पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। ये पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्मभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। ममा की विशेषताएं हम सुनते हैं। पवित्रता के गुण द्वारा परिवर्तन शक्ति का आधार स्तंभ। मम्मा प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, त्याग, फर्ज अदाई में सदा नंबर वन थी। प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, त्याग, फर्ज अदाई में सदा नंबर वन थी। इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा परिवर्तन, पहले स्वयं में किया, फिर अपनी रूहानी पर्सनैलिटी के आधार से अन्य आत्माओं का परिवर्तन किया। तो मम्मा ने पहले स्वयं ये सारा पुरुषार्थ किया। जैसे मम्मा परिवर्तन का आधार स्तंभ बनी, ऐसे हमें भी पवित्रता की शक्ति धारण कर स्वयं के साथ साथ प्रकृति सहित सर्व व्यक्तियों का परिवर्तन करना है। जैसे मम्मा परिवर्तन का आधार स्तंभ बनी, ऐसे हमें भी पवित्रता की शक्ति धारण कर स्वयं के साथ साथ प्रकृति सहित व्यक्तियों का परिवर्तन करना है। ओम शांति। आज सद्गुरुवार है, तो आदरणीय शशि दीदी जी आ चुके हैं, हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।
ओम शांति। आज सतगुरुवार है, हम सब बच्चों के लिए होते हैं, कुछ तो होते ही हैं बाबा के पास, लेकिन जब सब होते हैं तो बाबा को भी अच्छा लगता है कि सब बच्चे मेरे पास आए हैं। तो आज हम सब बाबा के पास जाएंगे और किसी को कुछ भी कहना है तो योग के टाइम, भोग के टाइम बाबा से बातचीत करें, आरू रूहान करें, बाबा आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। ये नहीं कहना कि हमने बाबा को कहा था, बाबा को क्यों कहा था, बाबा से बात करो, इसलिए सबको बाबा से बात करनी है। हम सब मिलकर के बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन होगी भाइयों की जो उस तरफ होगी और दो लाइनें बट्टी की टीचर्स बहने तथा माताओं की होगी। बट्टी की टीचर्स बहने और माताओं की एक लाइन यहाँ होगी और एक लाइन यहाँ जो कैमरा है वहां पर रहेगी और दो लाइनें अन्य बहनों की होंगी। तो आप सबको अमृत भी मिलेगा और अमृत के बाद फिर आप सभी ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में जैसे जाते हैं नाश्ता करने, वहाँ ही जाएंगे। अच्छा, अभी हम सभी बाबा के पास जाते हैं और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। Thank you.
पंचेंद्रियता छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समय पर। पंचेंद्रियता छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समय पर। दिव्य ज्योति में देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के। कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी
पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन मैं भोग लेकर के बाबा के पास पहुंची। बाबा जैसे कि पहले से इंतजार कर रहे थे, और बाबा एक बहुत सुंदर पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे। बाबा ने ऐसे ही दोनों बाहें पसारी, कुछ बच्चे बाबा के सामने पहाड़ी के नीचे इमर्ज हुए। फिर बाबा ने दोबारा कहा, आओ मेरे सभी लाडले बच्चे। तो देखते ही देखते क्या देखती हूँ कि बहुत से भाई बहनें बाबा के पास पहुंच गए हैं, और बाबा ने कहा, आओ सब बच्चे उड़ करके आ मेरे पास पहुंचो। और बच्चे बहुत खुश होते हैं, बाबा के पास हमको जाना है। लेकिन वहां जाने के लिए तो तीन गेट बने हुए थे। पहला गेट ऐसा था जिसमें लिखा हुआ था खुशियों की बहार, और जैसे बच्चे वहां पहुंचते हैं बाबा बाबा कहते हैं तो उनके अंदर इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। और क्या होता है, उस गेट से पुष्पों की वर्षा उनके ऊपर होने लगती है। लेकिन कई बच्चे सोच रहे थे हम इस गेट से कैसे अंदर जाएंगे, कैसे पार करेंगे। वो गेट पर पहुंचते थे और गेट बंद भी होता, और जो पुष्प थे वो ऊपर की ओर चलने लगे, नीचे उनके ऊपर वर्षा की बजाय वो पुष्प जो है वो अलग प्रकार से ऊपर की ओर जाने लगे। और फिर जैसे ही वो नीचे दूसरे गेट की ओर गए तो दूसरे गेट में लिखा हुआ था बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो जैसे कई बच्चे वहां पर पहुंचते हैं और उनके ऊपर जैसे सचिव के अंदर विश्व महाराजा आता है और महाराजा आता है, रॉयल फैमिली आती है उनको रिसीव करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, आगे उनके सामने होते हैं। तो ऐसे ही वो सब वहां उनके सामने उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। और कोई बच्चे सोच रहे थे अब क्या करें, तो जैसे वो सोच रहे थे तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वो गेट को क्रॉस नहीं कर पाते थे। और तीसरे भी गेट पर लिखा हुआ था सो स्थिति का आसन और सर्व अधिकारी संपन्न, तो ऐसे लिखा हुआ था। तो जो बच्चे अपने सो स्थिति के आसन स्वरूप में थे और बाप के द्वारा प्राप्त हुए अधिकारों का जो उन्हें प्राप्ति है उसके स्वरूप थे, वो उस गेट पर पहुंचते थे तो बाहर जाते उनका इतना सुंदर श्रृंगार जैसे कि कोई देवी या देवता का श्रृंगार किया हो। फिर जो बच्चे नहीं तीन गेट क्रॉस कर चुके थे तो बाबा ऊपर से उनको ऐसे हाथ करते हुए उनके ऊपर लाइट की किरणें पहुंचती थी। फिर उनको वही स्मृति आती थी पहले गेट में जो रुके हुए थे खुशियों की बहार, तो खुशियों की बहार में इतना वो खुशी में नाचते, बाबा मिला सब कुछ मिला, इस खुशी में वो खो जाते थे। वो गेट क्रॉस करते फिर से उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर दूसरे बच्चों के लिए बाबा ने क्या किया, जैसे दूसरे गेट के पास जाते हैं तो बाबा ने अपना हाथ उंगली की तरह से दिया, और जैसे बाबा के हाथ की उंगली पकड़ते हैं तो जैसे उड़ जाते हैं और वो बेहद के वैराग्य की स्थिति का अनुभव करते हैं, और उनके स्वागत के लिए उनको रिसीव करने के लिए आगे सजे सजाए हुए लोग खड़े हैं। फिर तीसरे गेट के पास जैसे वो पहुंचते हैं तो बाबा उनको फिर से याद दिला रहे हैं, बच्चे क्यों भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं है कि बाप ने तुम्हें अपनाया है और बाबा ने सब प्रकार के अधिकार बच्चों को दिया है, इस स्मृति में रहो। तो जैसे वो स्मृति में आते हैं तो हरि को बहुत सुंदर आसन मिलता है और उस आसन पर विराजमान होते हैं और इष्ट देव के रूप में वो दिखाई देते हैं। फिर बाबा जब देखते हैं सब बच्चों को इष्ट देव के रूप में, तो बाबा ने कहा कि देखो समय अनुसार सभी भगत और सभी मनुष्य आत्माएं अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं और वो कह सोच रही हैं कहीं किनारा मिले, कहीं सहारा मिले, कोई हमारी पुकार सुने। तो बाबा ने कहा कि अभी समय ऐसा आ रहा है, बच्चों को एक तो खुशियों में सदा अपने को भरपूर करना है और दूसरा है कि समय बेहद की वैराग्य वृत्ति की स्मृति दिला रहा है। कभी कभी कई बच्चे अलबेलेपन के कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति को नहीं कर पाते हैं, थोड़ा समय होता है और बाहर के आकर्षण उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बाबा ने कहा जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तब तक अपने आत्मिक स्वरूप और समय की पहचान भक्तों को देने की जो बाबा ने जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है कि बाप ने सर्व अधिकार और विश्व परिवर्तन अर्थात तथा संसार के अंदर बाप की प्रत्यक्षता की जिम्मेवारी बच्चों को दी है, इसलिए बाबा बीच बीच में बच्चों को उस स्थिति का अनुभव भी कराते हैं और साथ में बाबा बच्चों को उस स्वरूप का भी अनुभव कराते हैं कि भक्तों को कैसे अनुभव कराना है, मनुष्य आत्माओं की मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण करना है और ये विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा कैसे लहराना है। फिर तो जैसे बाबा ने सब बच्चों को अपने सामने किया और बाबा बहुत प्यार कर रहे थे, तो बाबा को मैंने कहा बाबा भोग लेके आए, तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बच्ची तुम अकेली भोग लेके आई हो, तो मैं चुप हो गई। तो बाबा ने कहा देखो सब बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सब बच्चे ऐसे हाथ करके जैसे वो सब भी बाबा के सामने भोग लेकर के आए हैं और सारी संदेशियों को भी सब बच्चों को बाबा ने वतन में इमर्ज किया हुआ था और सब जैसे बाबा के सामने भोग की प्लेट रखते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चों की भावना का जो स्वरूप है बाप के पास पहुंच रहा है और बच्चों की भावनाओं का स्नेह का रिटर्न बाबा बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा ने जैसे अपने हाथ से भोग उठाया और सब बच्चों के पास वो भोग पहुंचता है और भोग के साथ साथ एक वरदान भी पहुंचता है जिसमें लिखा हुआ था जामो साक्षी होकर देखना है, चल करके भी